अध्याय 16 शब्दार्थ विभेदक मापनी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। शब्दार्थ विभेदक मापनी एक ऐसा मापनी है जिसे ऑस्कुड सुशी तथा टोनेनबॉम 1959 द्वारा अर्थविज्ञान के क्षेत्र में मापन अध्ययनों के लिए किया गया था। इससे व्यक्तियों की मनोवृत्ति को भी सफलतापूर्वक मापा गया। अर्थविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन करते समय जब ये लोग उद्दीपनों के विभिन्न अर्थ का अध्ययन कर रहे थे तो इस मापनी का निर्माण किया गया। पैराग्राफ चेंज। शब्दार्थ विभेदक मापनी को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले उद्दीपनों के विभिन्न प्रकार के अर्थ की विमाओं डायमेंशंस को समझा जाए। अर्थ के निम्नांकित 3 विमाएँ हैं। 1 मुख्यार्थ डिनोटेशन, 2 स्वगुणार्थ कोनोटेशन, 3 साचर्य एसोसिएशन। मुख्यार्थ से तात्पर्य किसी वस्तु का उसके भौतिक गुणों के रूप में वर्णन करने से होता है। जैसे हाथी को उसके भौतिक गुणों के रूप में वर्णन करते हुए यह कहा जा सकता है कि यह मोटा, लंबा, बड़े बड़े कान वाला, आगे एक सूंड रखने वाला जानवर होता है। स्वगुणार्थ से तात्पर्य किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न भाव एवं मत से होता है। जैसे व्यक्ति यह कह सकता है कि हाथी एक भयानक एवं डरावना पशु होता है। इसे ही स्वगुणार्थ की संज्ञा दी जाती है। साचर्य से तात्पर्य किसी खास शब्द को देखकर या सुनकर कोई दूसरा शब्द या वस्तु के मन में आ जाने से होता है। जैसे हाथी शब्द को सुनकर यदि किसी व्यक्ति के मन में उससे संबंधित शब्द जैसे जंगल, सिंह, महावत आदि आता है तो यह साचर्य का उदाहरण होगा। शब्दार्थ विभेदक मापनी का संबंध मूलतः शब्दों के स्वगुणार्थक पहलू से होता है। बहुत कम ही ऐसे अध्ययन किए गए हैं जिसमें शब्दार्थ विभेदक मापनी का प्रयोग अर्थ के मुख्यार्थक पहलू के मापन में किया गया है। पैराग्राफ चेंज। किटर, राइट्समैन तथा कुक 2005 के अनुसार शब्दार्थ विभेदक मापनी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑस्कुड सुशी तथा टोनेनबॉम जिन्होंने शब्दार्थ विभेदक को विकसित किया ने इसे व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति अर्थ को मापने की एक विधि के रूप में वर्णन किया है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर निम्नांकित तथ्य प्राप्त होते हैं। 1 शब्दार्थ विभेदक एक ऐसी शोध विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति का किसी संप्रत्यय या वस्तु के प्रति एक विशेष तरह की अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। 2 शब्दार्थ विभेदक में व्यक्ति का वस्तु या संप्रत्यय के प्रति सिर्फ उसके अर्थ से संबंध प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। शब्दार्थ विभेदक मापने की रचना में सम्मिलित चरण स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। शब्दार्थ विभेदक मापनी का निर्माण सामान्यतः 7 बिंदु मापनी में होता है। इस मापनी के दोनों छोरों पर अर्थात बिंदु 1 तथा बिंदु 7 पर द्विध्रुवी विशेषण होते हैं। व्यक्ति को अपना मत इन्हीं 7 बिंदुओं में से किसी एक पर निशान लगाकर व्यक्त करना होता है। शब्दार्थ विभेदक मापनी का किसी भी शोध या अध्ययन में प्रयोग करने में मूलतः निम्नांकित चरण को अधिक महत्वपूर्ण बतलाया गया है। पैराग्राफ चेंज। 1 सबसे पहले शोधकर्ता एक संप्रत्यय का चयन करता है। संप्रत्यय वह वस्तु होती है जिसके प्रति व्यक्ति अपना मत दिए गए 7 बिंदुओं में से किसी बिंदु पर निशान लगाकर व्यक्त करता है। कुछ ऐसे भी अध्ययन किए गए हैं जिनमें 7 बिंदु मापने की जगह पर 5 बिंदु या 9 बिंदु मापने का प्रयोग किया जाता है। पुलिस, विपक्ष, समाजवाद, पिता आदि संप्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। संप्रत्यय का चयन करते समय अन्य बातों के अलावा 2 बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है। पहला तो संप्रत्यय निश्चित रूप से कोई ऐसी वस्तु या उद्दीपन को बनाना चाहिए जो विभिन्न तरह की अनुक्रिया उत्पन्न करे। दूसरा यह कि संप्रत्यय को अध्ययन की जाने वाली समस्या के संदर्भ में संगत होना चाहिए। जैसे यदि कोई शोधकर्ता किसी देश के राजनैतिक गहमा गहमी का अध्ययन करना चाहता है तो उसके लिए विधायक, लेजिस्लेटर, विधानमंडल, लेजिस्लेचर एक उपयुक्त एवं संगत रेलेवेंट संप्रत्यय होगा। परंतु शिक्षक, कर्मचारी आदि अनुपयुक्त एवं असंगत संप्रत्यय का उदाहरण होगा। पैराग्राफ चेंज। 2 संप्रत्यय के चयन कर लेने के बाद विशेषण के युग्मों एडजेक्टिव पेयर्स का चयन किया जाता है। इसका भी चयन करने में अन्य बातों के अलावा 2 कारकों पर ध्यान दिया जाता है। पहला तो यह कि विशेषण के इन गुणों द्वारा खास तरह के कारक का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऑस्कुर्ड एवं अपने सहयोगियों 1959 ने अपने कारक वैश्लेषिक अध्ययनों के आधार पर यह बतलाया है कि चुने गए विश्लेषण युग्मों द्वारा मूलतः तीन तरह के कारकों को प्रतिनिधित्व मिलता है। एक मूल्यांकन इवैल्यूएशन या ई, दो शक्ति पोटेंसी या पी, तीन क्रिया एक्टिविटी या ए। इन तीन कारकों को विशेषणों के समूह क्लस्टर्स ऑफ एडजेक्टिव्स कहा जाता है तथा इनसे अर्थ के तीन पहलू का प्रतिनिधित्व होता है तथा जिसके सहारे संप्रत्यय का मापन होता है। इन विमाओं को तकनीकी रूप से अर्थगत अंतराल कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज, मूल्यांकन कारक को विशेषण के कुछ निश्चित युग्म द्वारा जैसे अच्छा बुरा साफ गंदा सुंदर कुरूप आदि से व्यक्त किया जाता है। शक्ति कारक को विशेषण के अन्य गुण युग्मों जैसे बड़ा छोटा हल्का भारी मजबूत कमजोर आदि से व्यक्त किया जाता है। इसी तरह से क्रिया कारक को सक्रिय निष्क्रिय नए तेज मंद आदि जैसे विशेषण के युग्मों से व्यक्त किया जाता है। इन तीन कारकों में से ई कारक सबसे उत्तम होता है क्योंकि इसमें विशेषण का जो युग्म होता है वह स्पष्टतः एक दूसरे के विरोधी द्विध्रुवी होते हैं। यह शोधकर्ता रिसर्चर पर निर्भर करता है कि वह अपने शब्दार्थ विभेदक मापने में सिर्फ ई कारक को रखेगा या पी एवं ए को भी सम्मिलित करेगा। पैराग्राफ चेंज, विशेषण के युग्मों एडजेक्टिव पेयर्स के चयन में दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की योग्य यह है कि युग्म ऐसा होना चाहिए कि वह संप्रत्यय के लिए संगत हो। जैसे यदि शोधकर्ता युद्ध जैसे संप्रत्यय के प्रति प्रयोज्यों के मत को जानना चाहता है तो ईमानदार बेईमान खट्टा मीठा आदि अनुपयुक्त युग्म के उदाहरण होंगे, परंतु भारी हल्का तीव्र मंद सक्रिय निष्क्रिय आदि उपयुक्त युग्म के उदाहरण होंगे। पैराग्राफ चेंज तीन, तीसरे चरण में प्रत्येक संप्रत्यय जिसके प्रति प्रयोज्यों के मत को मापना है एक अलग अलग कागज के पृष्ठ पर लिख लिया जाता है और उसके नीचे सात बिंदु मापनी के रूप में ई पी तथा ए की श्रेणी के विशेषण युग्मों को लिखा जाता है। इसी सात बिंदु मापनी के किसी बिंदु पर निशान लगाकर व्यक्ति अपना मत उस दिन हुए संप्रत्यय के प्रति व्यक्त करता है। पैराग्राफ चेंज, शब्दार्थ विभेदक मापनी का एक उदाहरण तालिका 16 में दिया जा रहा है जिसमें संप्रत्यय के रूप में पुलिस का प्रयोग किया गया है। तालिका 16 में कुल 6 स्केल दिखलाए गए हैं जो सात बिंदु मापनी पर पुलिस संप्रत्यय का मापन कर रहे हैं। जिस बिंदु पर तारक एस्टेरिस्क का चिन्ह है उससे यह पता चलता है कि उसने विशेषण के गुणों को उलट दिया है ताकि प्रयोज्य के कुछ अनुक्रिया पूर्वग्रह आदि को नियंत्रित रखा जा सके। दाईं तरफ जो कोष्ठ में अक्षर दिए गए हैं उनसे यह पता चलता है कि विशेषण के गुण युग्म ई पी तथा ए में से किस श्रेणी के हैं। शब्दार्थ वेदक मापनी में किसी एक व्यक्ति को एक स्केल पर अधिकतम 7 तथा न्यूनतम 1 अंक दिए जाते हैं। सीधे क्रम वाले विशेषण के युग्म वाले मापनी पर अंक स्कोर 7:6 5:4 2:1 के क्रम में तथा विलोम क्रम रिवर्स्ड ऑर्डर वाले विशेषण के युग्मों वाले मापनी पर अंक 1:2:3:4:5:6:7 के क्रम में दिए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप तालिका 16 में प्रयोज्यों द्वारा दिए गए अनुक्रिया रिस्पॉन्स का अंक क्रमशः 6, 5, 1, 4, 5 तथा 5 होंगे। इन सब का औसत इज इक्वल टू _ 6+5+1+4+5+5 _ 6=26/6=4.33 आया। इसी ढंग से अन्य कई संपत्तियों के प्रति व्यक्तियों का विचार या मत प्राप्त कर लिया जाता है तथा उसके लिए उपयुक्त अंक देकर उसका औसत एवरेज ज्ञात किया जाता है ताकि यदि कई संप्रत्ययों का औसत एक समान आता है तो शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि व्यक्ति के लिए इन सभी संप्रत्ययों का अर्थ करीब करीब एक ही है, परंतु माध्य या औसत में अंतर होने पर यह समझा जाता है कि संबंधित संप्रत्यय अर्थगत अंतराल के रूप में भिन्न है। ऐसी परिस्थिति में ऑस्कुट एवं उनके सहयोगियों ने डी सांख्यिकी के प्रयोग कर दो या दो से अधिक संप्रत्ययों के बीच रेखीय दूरी का पता लगाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की सिफारिश की है। पैराग्राफ चेंज, शब्दार्थ विभेदक मापने की शोध उपयोगिताएं, रिसर्च यूटिलिटीज ऑफ सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। शब्दार्थ विभेदक मापने की शोध उपयोगिता मनोवैज्ञानिकों के लिए काफ़ी है। इन लोगों ने कई अध्ययन करके इसकी शोध उपयोगिता साबित कर दिया है। जैसे स्टाटस एवं स्टाटस 1958 में एक अध्ययन कर यह दिखलाया गया है कि कुछ शब्दों के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्ति में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से शब्दार्थ विभेदक मापनी द्वारा आंका जा सकता है। ब्लॉक 1957 ने विभिन्न शब्दों द्वारा उत्पन्न समय का अध्ययन शब्दार्थ विभेदक मापनी द्वारा सफलतापूर्वक किया। बाद में ऑस्कुट एवं उनके सहयोगियों ने इस मापनी का प्रयोग सफलतापूर्वक नॉर्वेजियन एवं अमेरिकन प्रयोज्यों के संवेगों का प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया। ऑस्कुट के इस अध्ययन से शब्दार्थ विभेदक मापनी की उपयोगिता क्रॉस सांस्कृतिक अध्ययनों में स्पष्ट हो जाती है। कुछ लोगों ने इस मापनी का प्रयोग विभिन्न अवस्थाओं में बालकों के अर्थपूर्ण संरचनाओं का अध्ययन करने में भी किया गया है। पैराग्राफ चेंज, शब्दार्थ विभेदक मापनी का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। शब्दार्थ विभेदक मापनी के कुछ लाभ एवं परिसीमाएं हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। एक, इस मापनी का कार्य क्षेत्र बड़ा है और इसके द्वारा विभिन्न तरह की शोध समस्याओं का अध्ययन सफलतापूर्वक किया गया है। दो, यह एक विश्वसनीय तथा वैध मापनी है। इस तथ्य को कई अध्ययनों में दिखलाया जा चुका है। तीन, इस मापनी में लचीलापन का भी विशेष लाभ है क्योंकि इसे आसानी से किसी भी तरह की परिस्थिति के अनुकूल बनाया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज, चार, यह मापनी मितव्ययी होती है क्योंकि इसे आसानी से कम समय में प्रयोज्यों पर क्रियान्वयन किया जा सकता है तथा इसके प्राप्तांक लेखन आदि में काफ़ी समय कम समय लगता है। पाँच, यह एक ऐसी मापनी है जिसे सफलतापूर्वक क्रॉस सांस्कृतिक सत्यापन के लिए प्रयोग किया जाता है। हिस 1969 ने इस पर भी बहुत ही सुंदर टिप्पणी करते हुए कहा है, अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, शायद कोई ऐसा सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है जिसे क्रॉस सांस्कृतिक सत्यापनों एवं क्रॉस समूहों के अध्ययन में उतनी प्रशंसा की गई हो जितने की शब्दार्थ विभेदक रेटिंग्स के ETA संरचना की गई है। अनकोट, इन लाभों के बावजूद इस मापने के कुछ परिसीमाएं हैं जो निम्नांकित हैं। एक, इस मापने में सबसे प्रमुख समस्या यह होती है कि उपयुक्त एवं संगत संप्रत्यय का चयन कैसे किया जाए। इस बिंदु पर निर्णय करने में शोधकर्ता को अक्सर अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है। दो, इस मापने में विशेषण के युग्मों के चयन में भी समस्या उत्पन्न होती है। जब तक ऐसे युग्म उपयुक्त नहीं होते, इस मापने के सही उद्देश्य पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि विश्लेषक के युग्मों का चयन ठीक ढंग से किया जाए, जो अपने आप में एक कठिन समस्या है। पैराग्राफ चेंज, इन परिसीमाओं के बावजूद शब्दार्थ विभेदक मापनी का प्रयोग मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा के क्षेत्र में सफलतापूर्वक उनके विशेष गुणों के कारण किया जाता है।